ये अनंत मिलन है, वहाँ संयोग और वियोग नहीं है, वहाँ मिलना और बिछोड़ना नहीं होता। अनंत काल तक प्रेम और प्रेमास्पद का आदान, प्रेम का आदान प्रदान अनंत विहार चलता रहता है। वही परम विश्राम है, वही हमारा परमाश्रय है, वहीं जा करके हम सदा सदा के लिए जन्म जन्मांतर के थकान को मिटा पाएंगे। उस अंतिम परिणति का प्रोग्राम अपने सामने हम सब भाई बहनों को रखना चाहिए। घटनाएं उस प्रकार की नहीं होंगी, घटनाएं तो हर भाई बहन के साथ नए ढंग की होंगी, लेकिन वह जीवन हम सब भाई बहनों को मिलेगा कि जहाँ मिल बिछुड़न नहीं होता, मिलने के बाद फिर बिछुड़ नहीं होता, ऐसा हम सबका हो सकता है। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह वर्तमान जीवन हम लोगों को मिला हुआ है। तो विचारक भाई बहन शरीरों से असंग होकर देहातीत में जीवन में विश्राम पाएं, और विश्वासी जन परम प्रेमास्पद की कृपामयी गोद में अपने को डालकर विश्राम पाएं। तो भक्तों ने शरीर के रहते रहते विविध रूप में उस विश्राम का वर्णन किया है। एक भक्त कहते हैं, हरि आश्रय लेने के बाद अंतर में जब ईश्वर की विभूतियां प्रकट होने लगती हैं, तो क्रियात्मक साधनाएं खत्म हो जाती हैं। तो वही उसकी सार्थकता है। तो एक भक्त कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, हरि मेरा सुमिरन करें मैं पायो विश्राम। हरि मेरा सुमिरन करें, जिसकी स्मृति उधर आने लगी, कैसे भाई क्या हो गया? तो तुमने हे मेरे भाई, हे मेरे बहने, आपने अपनी ओर से सब चेष्टाएं, सब चिंतन, सब भय, सब कुछ छोड़कर अपने को उसके समर्पित कर दिया जो सर्व समर्थ है। तो जब हमारी ओर से अहंकृति शून्यता आ गई, तो उस ओर से कृपा शक्ति का कार्य आरंभ हो गया। तो अब अपने को करना कुछ नहीं है। भक्त कहता है कि मैं तुम्हारी शरण हूँ और तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। तो वो निश्चिंत हो जाता है, वो शांत हो जाता है, वो परम विश्राम पाता है और प्रभु की कृपा शक्ति उसे संवारती रहती है। तो वो भक्त की वाणी मुझे बहुत अच्छी लगती है, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, हरि मेरा सुमिरन करें मैं पायो विश्राम। तो ऐसा विश्राम मिलता है, साधन काल में मिलता है, साधकों के जीवन में मिलता है, और यही विश्राम जो है वह उस अनंत से हम लोगों को अभिन्न करता है। तो पहले जीवन का दृष्टिकोण बदलिए, मुझे चिर विश्राम चाहिए, मुझे अनंत की शरणागति चाहिए, मुझे देहातीत जीवन का विश्राम चाहिए, चिर शांति चाहिए, निज स्वरूप का बोध चाहिए, ईश्वर का परम प्रेम चाहिए। तो जीवन के उद्देश्य को आप निश्चित करिए, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 दिन, 1 सप्ताह का समय काफी है। सवेरे सवेरे उठ करके बैठ करके विचार करते रहे, करते रहे, करते रहे, और ना को ना कर दिया और हाँ को स्वीकार कर लिया, इतना पुरुषार्थ हर भाई हर बहन कर सकता है। तो ये आप कर लीजिए, और चाहे विचार की दृष्टि से, चाहे विश्वास की दृष्टि से, 24 घंटे की रूटीन में 2-3 बार का समय विश्राम के संपादन में लगाइए। कहीं न कहीं आपकी वृत्ति जाकर के सत्य से जुट जाएगी। उसके बाद न सुनना शेष रहेगा, न समझना शेष रहेगा, न कुछ कहना शेष रहेगा। धीरे 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 विकास होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, आंतरिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और कब कैसे क्या हो गया अपने लोगों को पता भी नहीं चलेगा, काम पूरा हो जाएगा।
जीवन में अध्यात्म का एक बड़ा भारी महत्व है। संत वाणी में मैंने ऐसा सुना कि बनने बिगड़ने वाले संसार की सहायता से अपने को जो इच्छा पूर्ति का सुख और इच्छाओं की अपूर्ति का दुख मिलता है, वह सुख दुख का द्वंद व्यक्ति का जीवन नहीं है, वह तो अपनी ही भूल का परिणाम है, वह एक अपना भ्रम है, एक अवस्था है, वह जीवन नहीं है, वस्तुता है। जिस जीवन की मांग हम लोग अपने भीतर अनुभव करते हैं वही सत्य है, वही जीवन है, उसमें मृत्यु नहीं है, अभाव नहीं है, निरक्षा नहीं है। पहले मैं ऐसा सोचा करती थी कि मुझमें मांग है इसलिए मुझे उस जीवन की खोज करनी चाहिए, संत के पास बैठ करके जीवन की व्याख्या सुनकर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि क्योंकि वह सत्य है और अभी इसी वर्तमान क्षण में विद्यमान है तो उसकी विद्यमानता का फल है कि हमें उसकी आवश्यकता महसूस होती है और उसी के तत्व से हम सब लोग बनाए गए हैं, उसी के संकल्प से हमारा आपका यह जीवन वर्तमान मिला हुआ का मालूम हो रहा है। तो इसमें सत्य की जिज्ञासा इसलिए है कि सत्य विद्यमान है, इसमें परम प्रेम की प्यास इसलिए है कि उसी प्रेम तत्व से आप रचे गए हैं, इसमें दुख द्वंद की आसक्ति से, दुख द्वंद की दशा से छूटने का प्रश्न इसलिए है कि आपका जो अपना स्वरूप है वह दुख रहित ही है, दुख रहित धातु से आप रचे गए हैं और नित्य विद्यमान सत्य आपके जीवन के मूल में विद्यमान है और उसकी विद्यमानता का यह फल है कि खाते पीते सोते जगते जीते मरते सुख दुख भोगते व्यक्ति में उसकी आवश्यकता महसूस होती है और जो लोग उसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं, उस आवश्यकता की पूर्ति का पुरुषार्थ करते हैं, वे उस दिशा में सब प्रकार से अपने को संतुष्ट पाते हैं। तो जन्म मरण से परे जो नित्य जीवन है, क्षति वृद्धि से परे जो सदा सदा के रहने, सदा सदा के लिए रहने वाला नित्यानंद है, निजानंद है, परमानंद है, योगानंद है, ब्रह्मानंद है, ऐसा जो जीवन है वही आध्यात्म जीवन कहलाता है और उसी के विकास के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। तो इस दिशा में हमें अभी इसी वर्तमान क्षण में क्या करना है, किस प्रकार इस बनने बिगड़ने वाले दृश्यों के जाल से हम मुक्त हो सकते हैं, इस भ्रम का निवारण कर सकते हैं और किस प्रकार वह अध्यात्म जीवन जिसमें मृत्यु अभाव और निरक्षा नहीं है वह हमारे लिए प्रत्यक्ष हो सके, इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम साधन निर्माण है, इसी का नाम साधन तत्व की अभिव्यक्ति है और इसी का नाम साधक का साध्य से अभिन्नता है। अभी इस दिशा में अभी वर्तमान की जो बात है उस पर हम लोग थोड़ा विचार करें। मैंने जीवन को देखा और अध्ययन की दृष्टि से देखा, ऐसा मालूम हुआ कि जो कुछ हो रहा है उससे परे कुछ ऐसा भी है कि जिसके प्रकट हो जाने के बाद अपने को और कुछ करना शेष नहीं रहेगा और कुछ पाना शेष नहीं रहेगा, ऐसा मुझे मालूम हुआ। संत की शरण में बैठकर अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया मैंने, भीतर की जो आवश्यकताएं हैं उनको उनके सामने रखा, उनकी पूर्ति के विषय में जो कुछ उन्होंने बताया सबका सब तो मैं मान नहीं सकी, लेकिन जितना था जो कुछ मैंने माना उसके परिणाम से मुझे बहुत जल्दी ही थोड़े ही समय में इस बात का पता चल गया कि वस्तुतः जो जीवन है उसके अनुभव में बहुत काल की अपेक्षा नहीं है, ऐसा पता चल गया। और अब कभी जब मैं बैठती हूँ अकेले सोचती हूँ देखती हूँ तो इतना साफ मुझे दिखाई देता है, इतना साफ दिखता है कि कैसा एक विलक्षण जीवन है मनुष्य का। क्या है उसमें कि अगर शरीरों के साथ अपने को मिला लो और शरीरों के माध्यम से संसार को देखना आरंभ करो तो देखो क्या क्या दिखता है। अगर शरीरों की सहायता से दृश्य जगत का किसी प्रकार का सुख लेना पसंद करो तो देखो क्या क्या सामने आता है। तो एक बड़ा भारी विस्तार दिखाई देता है, कहाँ तक जान सकेंगे जानने का अंत नहीं, कहाँ तक देख सकेंगे दृश्यों का अंत नहीं, कहाँ तक सुन सकोगे ध्वनि का अंत नहीं, कहाँ तक सुख की इच्छाएं रख सकोगे उसकी कल्पना का अंत नहीं, कहाँ तक दुख का भार ढो सकोगे उसका कोई अंत नहीं, ऐसा ही लगता है। और सत्संग के प्रकाश में थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, मैंने बहुत देख लिया, मैंने बहुत सुन लिया, मैंने बहुत चख लिया, मैंने बहुत सोच लिया, अब कुछ समय के लिए ये सारी क्रियाएं जो शरीर और संसार की सहायता से होती हैं इनको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। घबराने की कोई बात नहीं है, ना अच्छा लगे तो फिर पकड़ लेना, कौन मना करता है, छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए, अकेले हो जाइए। तो अब मुझे कुछ देखना नहीं, अब मुझे कुछ इस समय सुनना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, तो कर्म को छोड़ दिया, स्थूल शरीर से साथ छूट गया, चिंतन को छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर से साथ छूट गया, और कारण शरीर की स्थिति की शांति जो है उसको भी पकड़ के न रहे तो उसका भी साथ छूटता है। तो इतना विचित्र लगता है कि केवल शरीरों के माध्यम से संसार के संयोग में होने वाली क्रियाओं को, करने वाली क्रियाओं को अपनी ओर से छोड़ दिया जाए, केवल इतनी सी बहादुरी हम कर सकें तो जीवन का दृश्य ऐसा पलट जाता है कि उसमें फिर प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, रस ही रस है, प्रियता ही प्रियता है, इनके अतिरिक्त और कुछ वहाँ है नहीं। जैसे ही हम शरीर और संसार के संयोग जनित क्रियाओं को छोड़ते हैं अथवा उन क्रियाओं में बड़ा सुख है इस भ्रम का त्याग करते हैं अथवा उन क्रियाओं में जीवन बुद्धि अस्वीकार करते हैं, तो इतने मात्र से जो ही हमारी जीवनी शक्ति बाहर से पलटकर भीतर की ओर जाती है और वहाँ जाकर अपने उद्गम से जुटती है तो तत्काल ही जीवन का दृश्य बदलता है। जो सत्य है वही प्रकट है, जो सनातन है वही विद्यमान है, जो परम प्रिय है प्रेम रस का अनंत सागर है, उसकी मधुरता में सीमित अहम भाव की सीमा भी गलकर धुलकर मिटकर समाप्त हो जाती है। तो सचमुच जो जीवन है वो कितना सुंदर है, कितना प्रिय है, कितना मधुर है, जिसमें दुख का लेश नहीं, मृत्यु का स्पर्श नहीं, जिसको हम कितने दिनों से सोच ही रहे थे कि ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, वह तो नित्य निरंतर विद्यमान ही है। और मैं बड़े आश्चर्य से देखती हूँ वर्तमान दशा को, बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करती हूँ जीवन का, संत की वाणी को सामने रखकर उसको देखने की चेष्टा करती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, जिन्होंने हम लोगों को बनाया उनका विधान कितना मंगलकारी है कि भाई तुम केवल एक एक भ्रम को जो लेकर के बैठे हो, केवल उसको छोड़ दो। तो छोड़ने में कोई प्रयास नहीं है, वो कोई गांठ नहीं है कि ऐसे मेहनत लगा करके और बुद्धिमानी लगा करके खोलना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे आपके अहम की रचना ऐसे विलक्षण है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मैंने स्वीकार कर लिया था असत के संग को, शरीर और संसार के संयोग को, तो मेरी ही स्वीकृति से शरीर और संसार का सब प्रभाव मुझ पर लग गया था, मेरी ही स्वीकृति से। तो उस स्वीकृति को बदल डालने की बात है। अब स्वीकृति को बदलो नहीं, और आंखों को साफ करने की कोशिश करें, मन को साफ करने की कोशिश करें, बुद्धि को साफ करने की कोशिश करें, तो जिस असत में जीवन बुद्धि स्वीकार करने मात्र से इन सब पर असत का रंग चल गया था, उस असत में जीवन बुद्धि अस्वीकार न करो तो दूसरे किसी भी उपाय से रंग उतरता नहीं। बहुत दुखी होते रहते हैं लोग। दूसरी बात यह है कि अहम रूपी अणु है जिसको हम लोग मैं कहकर संबोधित करते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे विचार हैं, ये मेरी अवस्थाएं हैं, ये मेरी दशाएं हैं, ये मेरे दुख हैं, ये मेरे सुख हैं। सिलसिला एक आरंभ हो गया, बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार जिसका कोई अंत ही नहीं लगेगा। शरीर का नाश हो जाएगा और सुख दुख के अनुभवों का नाश नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर कायम रह जाता है और उसमें अंकित हुए प्रभाव, इच्छाओं की पूर्ति के सुख का राग और इच्छाओं की अपूर्ति के दुख का क्षोभ, सब उसमें अंकित रह जाता है। बारंबार शरीर बदलता चला जाए, चेतना घटती चली जाए, जड़ता बढ़ती चली जाए, सूक्ष्म शरीर में अंकित प्रभावों का अंत नहीं होता। परेशान रहते हैं लोग, कैसे करें कैसे करें। उसमें रहस्य इतना ही है कि मनुष्य का जो यह मैंपन रचा गया, इस मैंपन में ऐसी विचित्रता है कि इसमें अपने ही द्वारा बनने बिगड़ने वाले दृष्टियों में जीवन बुद्धि स्वीकार कर लिया, तो उस पर बनने बिगड़ने वाले दृश्यों का प्रभाव बनने लग गया। उस स्वीकृति को तो बदलो नहीं और प्रभाव से बचना चाहो तो मिटता ही नहीं है किसी प्रकार से। तो अपनी ही स्वीकृति से इसके प्रभाव में हम फंस जाते हैं और अपने ही द्वारा अस्वीकृति से हम इन प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो एकदम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति सो गया हो और नींद में खूब भयंकर स्वप्न देख रहा हो, खूब दुखदायी बातों को देख रहा हो और घबरा रहा हो, रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो उसको पकड़ करके जगा दिया जाए आंख उसकी खुल जाए तो सब भ्रम खत्म, सब भय खत्म, सब दृश्य खत्म, ना वहाँ कोई डर रहेगा, ना कोई डराने वाला दृश्य रहेगा और ना इसके प्रभाव का दुख रहेगा। तो बस इतनी सी बात होती है, जरा सी देर में हम अपनी ही भूल से महादुख जाल में फंस जाते हैं। दुख जाल में भी फंसते हैं, सुख जाल में भी फंसते हैं। महाराज जी ने एक जगह पर ऐसे कहा कि अरे भैया सुनो सुनो, देखो सुखी आदमी दुखी नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। सुखी आदमी भी घोर दुखी है, क्योंकि सुख की दासता में फंसा हुआ है, इसलिए सुखी भी घोर दुखी है। ऐसा मत समझो कि वो दुखी नहीं है। तो इस प्रकार से दुख जाल में, सुख जाल में फंसा हुआ। अब उसने ज्ञान के प्रकाश में, संत के संपर्क में, सत्संग के आधार पर अपनी उस भूल को मिटा दिया, अर्थात बनने बिगड़ने वाले उत्पत्ति विनाश युक्त दृश्यों में से जीवन बुद्धि को अस्वीकार कर दिया। तो इस अस्वीकृति मात्र से उसका दुख से संबंध टूट जाता है, दृश्य से संबंध टूट जाता है। और मैं क्या बताऊं, उसके बाद व्यक्ति को फिर कोई नया जप तप ध्यान करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। करने वाला अध्याय तो खत्म हो गया, और न करने के जीवन में उसकी ऐसी सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है कि आप स्वयं ही देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वो सब कहाँ गया और ये सब क्या है। बड़ा बड़ा अच्छा लगता है मुझे सोच करके, भगवान के विधान पर बहुत प्रसन्नता होती है मुझे कि उन्होंने मुझ पर कितनी जिम्मेदारी डाली। तो मुझ पर केवल इस बात की जिम्मेदारी डाली कि तुमने अपनी भूल से जो अवस्था पैदा कर लिया है, उस भूल का त्याग करो, उस भूल को तुम मिटाओ, और उस भूल जनित परिणामों को हटाने का दायित्व मुझ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। असत्य के संग से मिलने वाले सुखों की वासना मुझे अपनी ओर से छोड़नी पड़ेगी, और वासना के त्याग से भी पहले असत्य के संग में सुख है इस भ्रम का त्याग मुझे पहले करना पड़ेगा। शरीर मैं हूँ, शरीर से मेरा जीवन है, शरीर के द्वारा संसार में कुछ करने का मजा जीवन है, इस भ्रम को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो इस भ्रम के त्याग मात्र से अपने अहम में एक आमूल परिवर्तन होता है। फिर उस परिवर्तन के आधार पर व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। सुख के प्रभाव से अपने को ऊपर उठाना बहुत ही सहज बात हो जाती है, बहुत सहज बात हो जाती है। इतनी स्वाभाविकता से जीवन का क्रम बदलता है कि अब जब कभी शांत होने का समय मिलता है मुझे, अकेली होती हूँ मैं, और इस प्रकार का क्रम एक रखती हूँ जीवन में, जब काम करने का समय हो तो साधन बुद्धि से काम किया जाए, और काम से जब फुर्सत मिले तो अकेले रहा जाए, शांत रहा जाए। तो इस क्रम में मुझे इतना आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि केवल गुरुजनित बात को अस्वीकार कर देना मेरा काम है, और सत्य क्या है वह तो विद्यमान ही है, उसका प्रकाश कैसा है ये तो फिर से किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस अविनाशी जीवन में कितनी मधुरता है, कितना रस है, कितनी सामर्थ्य है, ये नापतौल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह प्रत्यक्ष है और सभी के लिए है, समान रूप से सत्य है, सर्व काल में, सर्व देश में, और सब प्रकार के साधकों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए बस एक ही बात है और एक ही विधान है पूर्ण क्षमता है उसमें, सभी का समान रूप से प्रवेश है उसमें। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई नई योग्यता नया बल नहीं चाहिए। तो एकदम ऐसा ऐसा लगता है मुझे कि असत में जीवन बुद्धि स्वीकार करो तो जैसे दिखता है, दुख है सुख है विविध रूप दृश्य है ये है वो है वो है। अच्छा, अब सत्संग के प्रभाव से उस भूल को अपने द्वारा अस्वीकार कर दिया तो बिल्कुल ऐसे पलक मारते जीवन बदलता है कि जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है, रस ही रस है, दुख का नाम नहीं है, मृत्यु का स्पर्श नहीं है। तो वो ही तो है कहकर जिसको संबोधित कर सकते हैं, सचमुच वो ही है और तो कुछ नहीं है। अब उसको आप अपनी भाषा में ब्रह्म कहना चाहे तो ब्रह्म कह लीजिए, सत्य कहना चाहे सत्य कह लीजिए, परम तत्व कह लीजिए, निर्वाण कह लीजिए, सिद्धशिला कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, जैसी भी आपकी रुचि हो। जिन जिन महापुरुषों ने जीवन में सत्य को पाया उन्होंने अपने अपने ढंग से उसको अलग अलग नाम देकर के संबोधित किया, लेकिन है वही, वो एक ही है और सदा सदा से वही विद्यमान है, सदा सदा तक वही रहने वाला है। कि जब साधक किसी संत के पास बैठ करके साधना पूछता है और वे बता देते हैं, दो ही बातें होती हैं, या तो शरीर और संसार से असंग होकर शांत हो जाए, या फिर अगर तुम श्रद्धावान व्यक्ति हो, प्रभु की सत्ता में श्रद्धा है तुम्हारी, तो उन सर्व समर्थ परम पवित्र अत्यंत मधुर रसमय अस्तित्व जिसको हम भगवान कहकर संबोधित करेंगे, उन सर्व समर्थ की शरणागति स्वीकार करके अपने को उनकी शरण में समर्पित करके शांत हो जाओ। असली उपाय तो यही है, ऐसा बता दिया जाता है। तब क्या होता है कि साधक विचार पथ से साधक शरीरों की असंगता को प्रधानता देते हैं और विश्वास पथ से साधक प्रभु की शरणागति को महत्व देते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप चुप हो गए, थके हुए व्यक्ति को इस आराम का बहुत बढ़िया अनुभव होता है। जिनकी परिस्थितियां अनुकूल हैं वे भी थकते हैं लेकिन उस थकावट को महसूस कम करते हैं, और जिनकी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं वे थकावट को ज्यादा महसूस करते हैं। तो ऐसे थके हुए लोगों में से मैं भी एक हूँ जिसने प्रतिकूलता के साथ खूब संघर्ष करके और अपनी थकी हुई दशा को अच्छी तरह से अनुभव किया था। और मुझे याद है स्वामी जी महाराज ने जब मुझे विश्राम का मार्ग दिखाया तो मुझे कितना आराम मालूम होता था, और इसी आधार पर मैं सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि एक बार उस विश्राम में जीवन को देखो तो सही, बड़ा आराम मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। अपने द्वारा जो भ्रम मैंने अपने पर लाद लिया था उसको अस्वीकार कर देने का एक बहुत ही हल्कापन जीवन में आता है, तो आराम मिलने लगा, ठीक बात है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरी पुरानी भूलों के प्रभाव से तन में मन में बुद्धि में इंद्रियों में सब जगह 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 पर विकृतियां पैदा हो गई थी। तो आपने जब असत के संग को अस्वीकार किया तो मन चित बुद्धि इंद्रियां सबके संग को अस्वीकार करना चाहिए, ये बात पकड़ में आती है। अगर मैंने अपने को सर्व समर्थ के समर्पित किया तो अपने को उनके समर्पित कर दें और मन चित बुद्धि इंद्रियों को अपनी मुट्ठी में पकड़ के रखें कि ये हमारे हैं, तो ये समर्पण है, देख नहीं है तो समर्पित किया तो सब कुछ किया ना। अब साधक से भूल क्या हो जाती है समर्पण भाव में उसको तो बहुत ही आराम मिल गया और वह आराम सदा के लिए हो जाता। लेकिन भूल क्या हो गई कि उस आराम में उसको अंतर निरीक्षण की भी अधिक शक्ति मिल जाती है। ये मैं हूँ और ये मेरे सब संगी साथी हैं, ये मन है, ये चित्त है, ये बुद्धि है, ये इंद्रियां है, ये शरीर है, तो इनको अलग से देखने की विशेष सामर्थ्य मिल जाती है। समर्पण काल में, असंगता काल में जब साधक शांत होकर बैठता है तो उस समय उसको मन चित्त बुद्धि इंद्रियों के वर्तमान हाल को देखने की विशेष सामर्थ्य मिल जाती है। और जब साफ साफ दिखने लगता है तो समर्पित साधक उनको फिर से पकड़ लेता है। क्या बताएं, मैंने अपने को भगवत समर्पित किया लेकिन ये सब तो गंदे दिख रहे हैं। जिसको एक बार सर्वसमर्थ के समर्पित कर दिया तो वस्तुएं उनकी हो गई, मन चित्त बुद्धि इंद्रियां तन सब कुछ उनकी हो गई, तो उनको अब काम करने दो, उनकी कृपा शक्ति को सफाई करने दो, शांत करने दो, और फिर से उनको पकड़ करके आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर आप परेशान हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ परमात्मा को दिया था, कुछ अपने पास रख लिया था, आपने कुछ से असंगता स्वीकार की थी और कुछ से संग अपना रख लिया था। अधिकांश साधक बेचारे इसी पॉइंट पर आ करके बस अटके हुए रह जाते हैं। हाय कैसे करें, हाय कैसे करें। तो आध्यात्मिक जीवन कोई ऐसा जीवन है कि जिसके लिए हम प्रयास करते जाएंगे, करते जाएंगे, थकते जाएंगे, मरते जाएंगे और मिलेगा नहीं? ऐसी कोई बात तो है नहीं भाई। जो नित्य जीवन है, जो सर्वदा विद्यमान है, जो अकेला ही अकेले वो ही एक सत्य है और बाकी सब कुछ उसका विस्तार है, तो इस विस्तार को देख देख कर हैरान होते रहो और उस चिरंतन सत्य में आस्था न करो तो बीमारी का कोई इलाज है? कहीं नहीं है। जो एक एक क्षण में अपनी आंखों के सामने से निकलता चला जा रहा है, ओझल होता जा रहा है, मिटता जा रहा है, उस मिटने वाले में तो इतना विश्वास है कि जीवन काल में भी हम लोग उसको संभाल के रखना चाहते हैं और कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी बर्बाद न हो। मनाओ कुशल उसका, कहाँ तक कुशल मनाओगे? जो मिट जाने के लिए बना है उसको कितना कुशल मनाओगे भाई? जो सदा से छूटा ही हुआ है उसको कब तक पकड़ कर बैठोगे भाई? तो इस दिशा में तो हमारी इतनी चेष्टा है। और जो स्वतः विद्यमान है, जो प्रकाश ही प्रकाश है, जो आनंद ही आनंद है, जो रस ही रस है, जहाँ दुख नहीं है, अप्रियता नहीं है, नाश का लेश नहीं है, उसमें क्या जाने क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? तो यही हमारा भ्रम हमको उस सत्य से अभिन्न नहीं होने देता। संत की सलाह क्या है? तो संत की सलाह ये है, आपकी बहुत बढ़िया सेवा कर सकते हैं, हम चाहे तो उपार्जित की हुई संपत्ति को लेकर बहुत से दुखी जनों के आंसू पोंछ सकते हैं, हम चाहे तो शरीर का बल लेकर बहुत से निर्बलों को सहारा देकर गिरे हुओं को उठा सकते हैं, हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, और जब चाहे तब उस शरीर की संगति को छोड़कर उसमें जो पहले से मेरा एक ख्याल बना हुआ था, उसमें मेरी एक जीवन बुद्धि बन गई थी, उसको अस्वीकार करके जब चाहे तब और जहाँ चाहे वहीं पर अकेले होकर शांत होकर सब साथियों से संबंध विच्छेद करके उस नित्य जीवन के समर्पित होकर के वास्तविकता का आनंद देख सकते हैं। उस आनंद के अनुभव में जन्म जन्मांतर की थकान मिटा सकते हैं। उस शरणागत बत्सल की कृपालुता का स्वाद लेकर उनके मधुर रस के मिठास में जन्म जन्मांतर की अतृप्ति का नाश कर सकते हैं। साधन काल का अनुभव बताती हूँ मैं कि जैसे ही आपने उस अजर अमर अविनाशी का आश्रय अपने लिए स्वीकार किया नहीं कि भय मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी, सरसता बढ़ जाएगी और भीतर भीतर से इन तत्वों की वृद्धि जब होने लगती है तो इतना अच्छा लगने लगता है कि कभी कभी तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रोग को भूल ही जाता है, कष्ट का ही पता नहीं चलता। और ऐसा प्रयोग मैंने अनेक बार किया भी है और महाराज जी को करते हुए देखा भी है। तो मैं ये निवेदन कर रही हूँ कि सचमुच जो जीवन है वह उतना ही आनंदमय है, उतना ही आनंदमय है कि जितने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। दुख सुख के द्वंद में झूलता हुआ व्यक्ति जिसकी कुछ शक्ति सुख भोग में जा रही है, कुछ शक्ति दुख से बचने के लिए खर्च हो रही है, कुछ शक्ति मिथ्या अभिमान की रक्षा में खर्च हो रही है, इस प्रकार से जो शक्तियों का अपव्यय करने वाला निर्बल दुर्बल व्यक्ति है उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन जिसके भीतर चेतना जग जाती है, सत्संग का चाव लग जाता है, संतों के संपर्क का आनंद आ जाता है, वे जब इस साधना में प्रवेश करते हैं तो उनको अपने अंतर के उस आध्यात्मिक विकास का अनुभव करने में देर नहीं लगती है। सिद्ध जीवन की चर्चा मैं नहीं करती हूँ, उसकी चर्चा की तो आवश्यकता ही नहीं है। क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, कहना सुनना कुछ रहता नहीं है उस समय। संत कबीर कहते हैं, मनमस्त हुआ तब क्यों बोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। तो बोलना डोलना सब खत्म हो गया, उसकी चर्चा मैं नहीं करती हूँ। जिस दशा में हम सब लोग अभी इस समय फंसे हुए हैं उसमें से निकलने की बात मैं कर रही हूँ। इस यहाँ से हमको अपने को देखना है और कदम उठाना है तो सबसे आवश्यक बात जो है वो ये है कि इस समय से लेकर के कल प्रातः काल पुनः हम मिलेंगे, इस 24 घंटे के भीतर जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जिसको जिसको थोड़ा थोड़ा समय मिले, अकेले बैठ बैठ करके अपनी ओर देखना, सोचना और अपने अहम की जो बनावट है कि जिसमें इतनी सामर्थ्य परमात्मा ने दे दिया है, प्रारंभ से दे दिया है, मेरे बिना मांगे दे दिया है कि हम जब चाहे तो भ्रम का निवारण कर सकते हैं और भ्रम की निवृत्ति और सत्य की अभिव्यक्ति युगपद है, साथ साथ हो जाती है, इसका अनुभव कर सकते हैं। तो जिसको जब मौका मिले थोड़ा शांत रहिए और मेरा ऐसा विश्वास बन गया है कि सचमुच अगर अपनी ही महिमा आपकी समझ में आ जाए, अपनी ही विलक्षणता आपकी दृष्टि में स्पष्ट होकर के उभर आए कि सचमुच मुझ में यह सामर्थ्य है कि मैं जब चाहूँ तब अपने असत के संजनित भ्रम का निवारण कर सकता हूँ, तो केवल इतना ही हिस्सा हमारे करने का है। भ्रम का निवारण हुआ नहीं कि सत्य की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, उसमें कोई प्रयास अपेक्षित नहीं है और उसमें कोई देर नहीं लगती है। तत्काल महाराज जी ने कितने उदाहरण दिए, उन्होंने कहा है कि सूर्य का उदय होना और अंधकार का नाश होना एक साथ होता है। ऐसा नहीं है
यथा सूर्य का उदय तो अब हो गया, तो अब धीरे धीरे करके अंधकार को मिटाने की चेष्टा की जाएगी। ऐसा कभी सुना है? ऐसा तो नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश आया तो अंधकार का नाश हो गया तत्काल। तो ऐसे ही अपने अपनी अपनी भूल जनित रूढ़ियों को अस्वीकार करना अपना पुरुषार्थ है, और हमने अपनी ओर से उनको अस्वीकार किया नहीं कि सत्य के प्रकाश की अभिव्यक्ति और उसका अनुभव तत्काल उसी समय उस जीवन में आरंभ हो जाता है। भले किसी का रोगी शरीर हो, भले किसी के पास धन की कमी हो, भले किसी के कुटुंबों में कुटुंबियों में प्रेम और विश्वास की कमी हो गई हो, कोई चिंता की बात नहीं। इन बाहरी परिस्थितियों के अनुकूल और प्रतिकूल होने का कोई प्रभाव उस आध्यात्मिक जीवन पर नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया है और एकदम रेडीमेड है, उसमें कुछ घटाना बढ़ाना बनाना जोड़ना काटना कुछ नहीं है। जैसे से तैसे जो कर तो सदैव सर्वत्र विद्यमान है। तो जो जो भ्रम हमने कर लिया है उसको मिटाने का प्रश्न अपने लोगों के सामने है, और इसी संबंध में आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास के क्रम, उसकी साधना, बाधाएं उनकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। बाधाओं के निवारण का उपाय हमारे सामने आ जाएगा तो विवेचन का काम पूरा हो जाएगा। उन उपायों को धारण करके हम आगे बढ़ चलेंगे तो जीवन की शक्ति में।